मेरा कंसर्न है कि आर्मी चीफ जो है इज अ केयर टेकर, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, और जहां आप किसी से कोई चीज मांग लेते हैं तो दिस मीन यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। पता चला है कि जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अमेरिका से बात की और उन्होंने कहा कि आईएमएफ के फंड्स को रिलीफ किया जाए, तो इसके बदले में तो अमेरिका बहुत कुछ चाहेगा उनसे।
ये बताइए आर्मी साहब, आपको यकीनन पता होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, उस दौर में आर्मी चीफ की क्या वोकल या वैल्यू हुआ करती थी, उसका एक अपना एक रोल होता था। वो तो कभी इतने फॉरेन डिग्निटी से मिला नहीं करते थे, ना तो दौरे बाहर करते थे। ये आर्मी चीफ को आपने एक लगा दिया है बिल्कुल इक्वल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल पे, तो आप कैसे चलाएंगे? ये भी देखिए ना,
मगर
थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है।
क्या आर्मी में से इनके अगेंस्ट कोई नफरत निकल सकती है कि हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज? आर्मी के लोग इतनी शहादतें दे के अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के लिए पेश करते हैं, हाउ कैन
जनरल? मुझे तो डर लग रहा है कि जो हमारे यंग नीचे से आ रहे हैं पढ़ के बच्चे, ऊपर प्रमोशन होती है उनकी कैप्टन लेवल पे, लेफ्टिनेंट से आते हैं ऊपर चले जाते हैं मेजर ब्रिगेडियर, वो क्या सोचते होंगे 30-40 सालों में मुल्क ने क्या किया है, पॉलिटिशियन ने क्या किया है जो नए आ रहे हैं नीचे से। अल्लाह ना करे क्योंकि ऐसा कोई मसला बनता।
आई एग्री, मगर आप तो उस लेवल की बात कर रहे हैं, यूथ इज मोर मोबिलाइज्ड इन पाकिस्तान दीस डेज, मगर जो जनरल बाजवा साहब ने अमेरिकन्स को फोन करके आईएमएफ के फंड्स रिलीज करने का कहा है, इसमें तो मेरा ख्याल है सीनियर ऑफिसर्स के दिल में भी नफरत होगी, और एक शख्स जो उनकी नजर से नजर मिला के हाँ में हाँ मिला रहा है, यकीनन उसके दिल में भी, और ये आतिशफिशां फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा,
बहुत बुरा फटेगा।
बहुत शुक्रिया, वी विल टेक अ कपल ऑफ कॉल्स, आप मेरे साथ रहिएगा। जनाब खालिद लोधी साहब मेरे साथ हैं, आप इनके कॉलम्स मुख्तलिफ अखबारों में पढ़ते हैं। खालिद लोधी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, मेरी फोन ऑनलाइन है
जी। चंदा भाई नाम बताइए और सवाल की।
आप चंदा, आपको आपा इसलिए कहते हैं कि आप बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है बात। अगर आज मेरी बात आप जो ना बाल टाइम बड़ा सवाल भी आता हूँ मुझे, बातें आपसे बाद में करेंगे। अभी आर्मी चीफ ने आपने बोला कि वो अमेरिका को बोला है, ये इतना पावरफुल आदमी है एमरजेंसी लगा देता, कहता जिस जिसके पास बार पैसा उसको वापस लेकर आओ। एक जाहिल आदमी बंदा भी ये करता है, सिर्फ ये ड्रामे कर रहा है। और ये इमरान खान का मुर्शिद के खिलाफ जो बात कर रहा ना कल, ये इसी ने किया हुआ है। और याद रखें, जब तक एमरजेंसी में नून लीग का मरियम के पैसे जरदारी के तौबा नौज मिले, उसका नाम मैं जुबान पे ला रहा हूँ,
बात नहीं कोई बात,
का पैसा और सारे पैसे जितने भी है सारे का एमरजेंसी लगा दे, ये बंदा खुद $1 बिलियन लेगा, हाँ पैसे बाहर भेज देगा, ये खुद बड़ा बड़ा चोर है। ये खान साहब से बोले जरा तफरत से करें इस बात।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये वाला। और जी खालिद साहब आप जरूर इसका
बहुत अच्छी बात की है कॉलर ने आपके, जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से बात कर रहे थे ये, लेकिन देखे ना लोगों के दिलों में क्या क्या बातें हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल जनरल सही।
मतलब खालिद साहब जैसे उन्होंने ये सवाल किया, मतलब आप टेक्निकल, आप भी टेक्निकल जवाब दे रहे हैं, मेरे जैसा बंदा आप वो माजिद जमाल साहब अली गूंगी बदमाशी कर रहे हैं कि ना इधर के ना उधर के, मतलब मेरे जैसा बंदा दिल की बात करता है कि अगर वो एमरजेंसी लगाते हैं तो जो जितने लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं देखा हम तो कहते थे ये एमरजेंसी लगाना चाहता था। अब इस वक्त सूरत हाल है, न जाए मानदन न पाए रफ्तन, यानी ये वो छछुंदर है ना जो पेट में निकल रहा है ना जो थूका जा रहा है। अगर वो इमरजेंसी लगाते हैं तो पीटीआई वाले खफा हो जाते हैं, अगर वो इमरजेंसी नहीं लगाते तो ये बकाया को लूट कूट के खाएंगे। मगर आप प्लीज जरा तजिया बयान कीजिएगा, मतलब डोंट ट्राई टू बी अ पॉलिटिशियन विद अस, वो माजिद भाई वाली गूंगी बदमाशी ना करें।
पहली तो बात है किस कैपेसिटी में इमरजेंसी लगाते जनरल बाजवा, आईने पाकिस्तान में कहां लिखा है?
सही सही, तो इसका मतलब है इस वक्त जो लूट खसूट का मामला गरम है, जो खरीदा खरीदी बेचा खरीदी चल रही है, जो दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं विनर पोजीशंस में हैं उनको मुल्क से बाहर निकालना, तो जनरल साहब मस्ट बी क्वाइट, दैट्स व्हाट यू वांटेड।
देखे ना जी, आप पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन वाले जो मलिक हैं, मलिक रियाज, वो इस कदर पूरे तमाम शहरों की जमीनों पे, जरई जमीनों पे कब्जा कर लिया उन्होंने, लोगों को वहां घर बना के दे दिए, और उनके पास जितना स्टाफ उनका है वो सारे के सारे तो फौज के बंदे हैं, रिटायर्ड जो होता है वो चले जाता है, और हर सियासी पार्टी के अंदर उनका वो शेयर है, बात मिलते हैं, मुझे बताइए।
सही, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम,
अपना नाम चंदा भाई बता दीजिए और सवाल कर लीजिए।
आवाज आ रही है आपको मेरी?
बहुत खूबसूरत।
चलो शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम साद है, मुझे इसमें पूछना ये था कि जो भी हालात पाकिस्तान के हैं, डेफिनेटली इसमें सारे ही जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन जो कि आज बाजवा साहब को जितनी बुराई पीटीआई वाले कर रहे हैं, हमारे साबिक कप्तान साहब कर रहे हैं, जिनको चार साल फुल सपोर्ट अखिलिया की भी मिली और अपना जुडिशरी की भी मिली, यानी कि अपना फौज की भी मिली और सारी मीडिया तो फुल अभी तक है, पहला वजीर आजम है जिसको अपोजिशन में था तब भी इनको मीडिया फुल कवरेज दे रहा है, और अब भी यानी कि जब थे तब तो सियासत के मालिक थे, तो जब इन्होंने पार्लियामेंट में अटैक किया था तो आया इसमें तो कोई अखलाकी जरूरत होती है कि आप जिस मुल्क की पार्लियामेंट पे अटैक करें, जिस मुल्क के मीडिया पे अटैक करें पीटीवी पे, उसमें आपको फांसी देनी चाहिए या फिर आपको वजीर आजम बना देना चाहिए, और जब इनको इतना चांस मिला तब ये कुछ नहीं कर सके, तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा है, ये बंदा कह रहा है कि फौज पाकिस्तान की नहीं होती तो तीन टुकड़े हो जाते। तो भाई
सर अपना सवाल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो यही है सवाल
जी। लोधी साहब आप जवाब दीजिएगा,
पार्लियामेंट पे अटैक कर
जी, मैं इनकी आवाज पूरी सुन नहीं सका, इनके आपके दूसरे कॉलर की क्या कहना चाह रहे हैं?
वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट पे अटैक करे, और क्या उसको वजीर आजम बना देना चाहिए या उसको उसकी सजा मिलना चाहिए?
किस पे अटैक करे?
पार्लियामेंट के ऊपर, जैसे खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई, या जो अपनी मर्जी की, अभी जो डिप्टी स्पीकर से अपनी मर्जी की रूलिंग ली गई और डिप्टी स्पीकर को जब अदालत ने बुलाया तो उन्होंने आने से भी इनकार कर दिया।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये बहुत बुरी सूरत हाल है, ये होना नहीं चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त होती है, नेशनल असेंबली में होती है।
सर ये तो बड़ा आसान है कह देना होना नहीं चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कैसी होगी? अगली कॉल की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए।
हेलो।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए।
नाम आजम है
जी।
मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सिलसिला पाकिस्तान में चल पड़ा है ना, वो इंतजामिया को काम करने दे रहे हैं, टगे टगे का आदमी कह रहा है कि हमें आ लेने दो, हम इसको भी रगड़ा लगाएंगे, इसको भी रंधा फेरेंगे, ये किस तरह पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? और आर्मी चीफ को आप क्यों भी बुरा बड़ा कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत पर वो ममूर है, वो पाकिस्तान का पार्ट है। इसके दौर में मरानहा के दौर में वो पहले टूर करते थे, मरानहा बाद में जाता रहा है, तो इसमें अगर उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि आई एम
वो नहीं करनी चाहिए,
तो इसमें रोने धोने वाली क्या बात है भाई?
ये मैं आपको लोधी साहब का जवाब आता है, मगर एक इसमें मैं ये कहती हूँ, अगर वो इमरान खान के दौर में भी आर्मी जनरल ने ये किया तो दैट वाज रॉन्ग। अब भी अगर किया है, क्योंकि जो मुहाफिज है अगर आप उसको आगे ले आएंगे तो वो आपसे बेसिस भी मांगेगा, वो आपके मुल्क की सड़कों से भी गुजरेंगे, एंड दे विल डू एवरीथिंग। उस मामले में मुहाफिज का सामने आना बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स की अलिफ बे नहीं आती।
शुरू से ही आगे हैं
सर, गलत था, गलत
किया नहीं जा सकता ना, पहले मुहाफिज बहुत अच्छे थे तो आप वो बुरे हो गए, ये क्या बात है, ये तो निशानों वाली बात ही नहीं। पहले वो करते उसके
आप चाहते हैं कि गलती गलती ही रहे, दैट्स व्हाट यू वांट, आप ये चाहते हैं कि गलती गलती रहे?
नहीं गलती नहीं, गलती को सुधारना चाहिए
सर। मुहाफिज का पैसा मांगना ये यूं समझें कि अगर आपने किसी को टिप दे दी है ना, तो यू विल ask him to do whatever you want. That's wrong. I am so sorry कि आपका माइंड कहाँ है?
एक्सटेंशन मैंने तो नहीं ना
सर, मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रही। जा के IMF के लिए पैसा मांगना वॉज नॉट एज अ ले मैन आई थिंक इट वॉज नॉट. जी रोधी साहब आप क्या फरमाएंगे? ये अफसोस है कि हम अपनी मोहब्बत और नफरत से इतने बैड हो गए हैं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि हाउ बैड इज कि आपका मुहाफिज मुल्क का जाके पैसा मांगे तो वो आपको वहां ट्रीट करेगा जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. जी सर
देखिए अफाजे पाकिस्तान हमारी तो आंख सारा है जी, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन यह कि आर्मी चीफ का ये रोल नहीं हुआ करता कि IMF से वो पैसे मांगे.
वेरी सैड कि लोगों का दिमाग इतना मऊफ हो गया है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर. आर्मी चीफ सपोर्ट करे मुझे कोई आर नहीं,
मगर आर्मी चीफ को
पैसा नहीं मांगने.
आर्मी चीफ जो है वो मुल्क के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर काम करते हैं वो, तो उनको उनको जो है इजाजत किसने दी? तो इसका मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो नाकाबिल है. अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मेरी तो बात नहीं,
ये भी नहीं कहती माजिद भाई
मेरी बात तो नहीं मान रहे हैं वो, आप उनसे जाके
आपने जब अपनी पोजीशन का ओथ लिया था तो आपने ये ओथ हर पोजीशन के लिए जो ओथ है
सही,
तो आपने अगर आपको आप यस प्राइम आर्मी चीफ इज वर्किंग अंडर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बट अगर वहां पर आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है मुल्क की सिक्योरिटी तो ही कैन रिफ्यूज, ही कैन रिफ्यूज.
मगर
मोदी साहब आप क्या फरमाएंगे?
नहीं
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बजा फरमा रही हैं आप. आर्मी चीफ का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं
सर. मगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा जी मेरी बात तो अमेरिका मानेगा नहीं, आप जरा ट्राई करके देख लें,
उसके बाद आप परवेज मुशर्रफ की तरह अड्डे भी दे दें.
गलत, मैं कहता हूं गलत है ये, मैं ये सही नहीं कर रहा हूं सही है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर को आपको मुरद बनाना चाहिए.
अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं और दिस इज आवर
सेकंड
लास्ट कॉल है क्योंकि हम इसको बढ़ा नहीं सकते. अपनी मोहब्बत में इतने टेढ़े ना हो जाएं कि मतलब एट द एंड वो आज तक अमल कांसी को जो दिया था ना वो भी कॉम्प्रोमाइज ही थी, और उसके बाद आपने मुंह पे चपेड़ खाई थी, इतनी कमाल की चपेड़ खाई थी कि उन्होंने आपको कहा था ये अपने डॉलर की इवज अपनी माँ को भी बेच सकते हैं. दैट्स व्हाट यू गॉट.
आरफा सदीकी, आरफा सदीकी को देखिए ना जी कहाँ है.
आरफा सदीकी बेचारी तो बहुत प्यारी है. आफिया सदीकी, आफिया सिद्दीकी, आफिया सिद्दीकी साहिबा, यानी जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना तो दिस इज कॉम्प्रोमाइज, दिस इज कॉम्प्रोमाइज. और आर्मी ने कभी आप आवाम के अगेंस्ट हथियार नहीं उठाया था. वजीरिस्तान में आर्मी को लोगों के सामने आके अपने मुल्क के बंदों को मारना पड़ा. आपके ड्रोन अटैक्स कितने हुए, कितने बेशुमार लोग मरे थे क्योंकि आपका कोई बंदा मरा नहीं था उसमें. मैं तो कहती हूँ टेररिस्ट बनता कौन है? जिसकी माँ मर गई, जिसका बाप मर गया, जिसका भाई मर गया, वो कहता ला हूं मैं सारे नु लेके मरांगा. सेकंड लास्ट कॉल जी. अस्सलाम वालेकुम जी.
वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम.
शुक्र है कि कॉल ली, अब काटिएगा नहीं, इशू तो बहुत हैं भाई.
करो 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 जरदारी साहब, करो बात करो.
बात ये है कि देखें UAE का शहजादा नाराज हो जाए इमरान खान की वजह से, आर्मी चीफ जाए, सऊदी अरब नाराज हो जाए आर्मी चीफ जाए, चाइना नाराज हो जाए आर्मी चीफ जाए, USA नाराज हो जाए आर्मी चीफ जाए. अगर अभी हुकूमत का हिस्सा होते अंडर द अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंडर ही तो आर्मी चीफ काम कर रहा है ना. तो अगर वो मुल्क के हालात देखें, ये हम लोग जो है ना ये मानते नहीं है. हम अमेरिका की गुलामी अयूब खान के जमाने से करे आ रहे हैं और ये हमारे टोपी वाले करते हैं, मैं खुला कह रहा हूँ.
अच्छा मुझे एक बात का जरदारी साहब, आपको बड़ी सियासत का पता है, आप मुझे जवाब देते हैं एक बात का.
जी बोले.
मैं इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि 5:30 बजे हमारा अगला सेगमेंट आ जाना है. आप समझते हैं कि एक वक्त में अगर गलत हुआ कभी ना कभी तो दुरुस्त होना चाहिए था. ये जो खालिद साहब है ना, ये जो खालिद साहब है ये मुसावात के साथ लिखते रहे हैं, और जितने बंदे मुसावात के साथ लिखते रहे हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुझान है. मगर उन्होंने भी ये कहा है कि भुट्टो साहब के दौर तक ठीक था, जरदारी साहब ने आज तक वो जो बेनजीर का एक भाई मरा, दूसरा भाई मरा, बेनजीर आप मर गई, और वो नवाज ने भी, वो जो राय नवाज है उसने भी बयान दे दिया, आप अपनी बीवी तक के कत्ल का तो फैसला नहीं करवा सके, तो आप मेरा और आपका कहां फैसला करेंगे?
मैं बात कर लूं?
करो.
देखें अब हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा. ये जो चिकन पेरी करते हैं ना हम लोग, तीसरे चौथे छठे नंबर से उठा के आर्मी से बनाने नहीं बनाना चाहिए. नंबर वन सीनियरिटी से जो भी ऊपर आर्मी चीफ आ जाए उसको बना देना चाहिए आर्मी चीफ, ये मामला खत्म करना चाहिए, वक्त आ गया।
जिंदाबाद।
दूसरी बात और चीफ जस्टिस के लिए भी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं तो इनके लिए स्क्रूटनी होनी चाहिए, बाय पार्टीशन होना चाहिए, उसमें अपोजिशन और सारी पार्टियों की पार्लियामेंट।
मेरा दिल करता है आज मैं आपका माथा चूम लूं, जिंदगी में जब से मैं आपको जानती हूं पहली दफा आपने सेंसिबल बात की है।
अच्छा दूसरी बात, आ गया आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस का इसी तरह से होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए होना चाहिए, उसमें अपोजिशन हुकूमत साथ रहे, इसलिए कि जिन लोगों को ना नौकरी करते हुए सियासत का चस्का पड़ गया तो भाई वर्दी उतारिए और
इलेक्शन करिए,
लड़िए जाके इलेक्शन, आप कौम के फैसले नहीं करें। अच्छा दूसरी बात, आपने जो जी बिल्कुल, मेरा दिल करता है क्योंकि मोहतरमा मेरी लीडर थी, मेरे दिल करता है कि भुट्टो मेरा लीडर था, आसिफ जरदारी बिलावल की, आसिफ जरदारी की और बच्चों की जो इस वक्त सिक्योरिटी है, हर वक्त आर्मी के हिसार में रहते हैं, रिटायर लोग उसको वो कर रहे होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन हमारी मोहतरमा को क्यों नहीं थी?
जिंदाबाद।
बस मैं सवाल जोड़ के जा रहा हूँ। और फिर दूसरी बात चलते चलते कर जाऊं, आपको पता है अमेरिका और न्यू मेक्सिको की लड़ाई हुई थी, आज मेक्सिकन वो न्यू मेक्सिको स्टेट अमेरिका ने मेक्सिको से छीन लिया, आपने काबिल कंधार से ये अटक कर पार कहते थे कि हमारा पख्तूनिस्तान है, आज पख्तून आपको मिलेंगे, मैं अपने पाकिस्तानी पख्तून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अफगानी बदीन में, ठट्टा में, कराची में और अमाड में
लूट के भी खा रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की
नहीं, सुन लेना, इमरान खान ने जो कहा कि तीन टुकड़े होगा, ये इनका ख्वाब है कि बलोचिस्तान की लैंड को और सिंध की लैंड को अफगानिस्तान में शामिल करेंगे, सिंध का बच्चा बलोच बच्चा कट मरेगा, ये कभी नहीं होगा, और ये जो जितने इलीगल जो लोग हैं इनको निकालो यहाँ से, और सिंधी गांव गोठों को प्रोटेक्ट करो, पीपल्स पार्टी इस मामले में नाकाम है, आप सिंधी मीडिया को फॉलो करें, और शौकत जरदारी न्यूयॉर्क में होता है, इज एंकर पर्सन, और मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, उनसे डे बाय डे की सिचुएशन पूछें, पीपल्स पार्टी इज लूजिंग दिस टाइम इन सिंध, खुदा हाफिज़।
बहुत शुक्रिया जरदारी साहब, एक मिनट रुकना, मेरी बात सुनना, चले गए,
रेडियो सुन रहा हूँ,
ओ मेरे जान टूटे सर, बड़ी कमाल की, ये बंदा पाकिस्तान नहीं है, ये बंदा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है। मैंने आज फर्स्ट टाइम मैंने जरदारी साहब को सेंसिबल बात करते देखा है, जनरल बने तो पोजीशन पे, जज बने तो सीएसएस के इंतजाम। जी सर,
एक तौसीफ कर दूं कि मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया हूं, आपने बताया था कि अमेरिका में रहा, मैं अमेरिका नहीं गया हूं, और दूसरा यह है कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ मेरी हमदर्दियां रही हैं, मैं बानी रुकन रहा हूं फैसलाबाद से भुट्टो तक, जड्डे भुट्टो तक, उसके बाद नहीं, जब बेनजीर की करप्शन, जरदारी की करप्शन भी तो छोड़ दिया सर।
बेनजीर एक बेचारी औरत थी, मरी पड़ी थी, वो औरत तो इतनी इज्जतदार औरत थी कि आप इमेजिन करो कि उसका मियां क्या मैं कहूं, मगर उस औरत ने अपने बच्चों को पाला लेके, और मतलब जो बाज़ औक़ात हमको ओहदे और रुतबा मिलता है ना, तो हम अपनी शर्म और लिहाज के बीच में अपने शौहर की बुराई नहीं कर सकते।
That's what she did. मैं आपके सुनने वालों के लिए इजाफा कर दूं कि रेमंड डब्ल्यू बेकर की किताब पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान किस तरह लूटा गया, किस किस ने लूटा।
रेमंड डब्ल्यू बेकर की कौन सी किताब?
एशली थील जो है।
ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आई हैव रिटन इट डाउन। पाकिस्तान सारों ने लूटा सर, किसने नहीं लूटा?
बिल्कुल,
ये
बिल्कुल
किसने नहीं लूटा,
जिसका हाथ लगा।
लास्ट कॉल मेरे साथ है, वी आर आउट ऑफ आवर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी सर, अपना नाम बताइए सर।
हाँ जी, मेरा नाम परविंदर है जी।
परविंदर जी, थैंक यू वेरी मच कॉल दा।
मैं अज घरे बैठा, थोड़ा टीवी ला लिया, ते अज मैं पहली बार नहीं मैं रेडियो से सुनदा।
आई लव यू बच्चा, थैंक यू, यू आर ऑलवेज विद अस।
हाँ जी, मैं सच्ची गल करन लग्या जी, एक
करो,
मैं नाले भाई साहब तो भी ये पुछना चाहना वा, अज तो एक जदों इमरान खान की सरकार सीगी पाकिस्तान दे विच, मैं उदों तुहानू एक क्वेश्चन किया सी, तुसी दोवें मेरे नाल गुस्से हो गए सीगे, मतलब तुसी उह लाइक नहीं कीती सी मेरी मेरी गल। गल की सी, क्वेश्चन ये सीगा, मैं ये कह सी भी आर्मी चीफ पाकिस्तान, पहला मैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कह दिना, उन्होंने काम बाहरलियां जिहड़ी ताकतां ने उहनू काबू च रखना, मीनस छाउणी तक उन्हां दा प्रबंध चाहीदा कि जिहड़ा आर्मी चीफ आ विरोधी, चाहे इंडिया विरोध करदा गलत काम करदा, उहदा मुकाबला करे। आर्मी चीफ नूं ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ।
ਔਰ ਆਜ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓਂ ਕੇ ਵਰਡ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਆਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਆਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਵਰਡਸ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿੱਕ, ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਟੇਕ ਅ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਨਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਇਵਾਨ ਮੇਂ, ਇਰਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਤੋ ਜਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਹੀਂ ਔਰ ਕੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਮੇਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਹਾਂਜੀ ਅਲਫਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਆਈਐਮਐਫ
ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਟੈਕਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਸਟਰੈਂਥ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
ਮਗਰ ਇੰਟਰਨਲ
ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ।
ਬਹੁਤ
ਆਈ
ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਤੀ, ਮਗਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਯੂਰ ਕਾਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ, ਅੰਧੋ ਮੇਂ ਕਾਨਾ ਰਾਜਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਅੰਦਰ ਕਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਮ ਐਂਡ ਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨਾ ਉਤਾਲਾ। ਮਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਂ 16 ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਪਰ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਪਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀ ਥੀ, ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਥੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਗਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਬਲ ਬੋਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੁਝੇ ਸ਼ੌਕਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ 416-648-5050 ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ 416-617-2405। 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022।
ਗ੍ਰਿਲ ਐਂਡ ਚਿਕ, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, skewers, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500. Grill and Chick.
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से रابطہ कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522, 302-2522।
Valia Traffic Legal Services se Janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding.
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड, मॉल्टन में। रूबी ज्वेलर्स।
Pizza Stores and Wings, 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yahoo, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out call 905-789-8838, 905-789-8838,
A call truck and loo.
Tade truck badshah di quality service, repair, oil change, wash te maintenance.
Ek aur khush khabri.
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty.
A call truck and loo. 1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
Family is everything, and no matter where they are in the world, connecting with them just got a little easier. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
जी साहब नाजरू वेलकम बैक अगेन एंड 4:29 और 1 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुका है, बातचीत काफी होगी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बातचीत से और इसके बाद फिर हम आपकी हमारे हिसाब से मुलाकात करवाएंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ इन द मीन टाइम जनाब शिराज उप्पल एंड रफाकत अली खान साहब की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, समाप्त फरमाइए। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
Ya Nabi Ya Nabi Sallu alayhi wa alihi
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए, बायोकैम पेस्ट कंट्रोल। हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे। उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलीजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 647-848-4020
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपेरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हां, 416-570-0157।
परिवार ही सब कुछ है। दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है। अब जब आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के, ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा। उनकी मदद करने का यही सही तरीका है। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं। CIBC.com/cashpickup पर जाएं।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowie Drive, West Brampton. Ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
Jisa program mein ek zafir se khush aamdeed kehna chahti hu aur Allah kare ke koi hum behtar kaam kar sake. Aaj mere sath is program mein shamil hua karte hote hain janab Karamatullah Ghauri sahab shamil hua karte hain aur Karamatullah Ghauri sahab kisi taaruf ke mohtaj nahi hain. Aapne apne CSS ka imtihan pass karne ke baad 30 plus years ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्होंने गुजारे थे. बहुत खूबसूरत लिखते हैं, पोइट्री करते हैं और मेरा ख्याल है पोइट्री तो इसी हवाले से करते होंगे. यकीनन इनको भी अपनी ज़िंदगी के किसी एक दौर में इश्क हुआ होगा और कहते हैं इश्क, मगर मुझे तो ये पता चलता है कि नाकाम इश्क जो है वो इंसान को शायर बना देता है. मगर साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, चाहे वो कॉलम्स हों चाहे वो पोइट्री हो. पॉलिटिकल बात करना हो तो भी आप जनाब करामतुल्लाह ग़ौरी साहब से बात कीजिएगा. आज 3 मुहर्रम है और करामतुल्लाह ग़ौरी साहब से इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे. थोड़ी मुहर्रम के हवाले से बात होगी, थोड़ी उनके करियर से मुतलिक उनकी यादों को हम आपके साथ शेयर करते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम आरिफा, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ.
बहुत शुक्रिया सर, आपके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया. मैं सर जब भी आपसे बात करती हूँ आई ऑलवेज थिंक के दिस इज़ योर डेडिकेशन एंड आई बिलीव कि जब आप अपनी जॉब के ज़माने में थे और पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारियाँ आपके ज़िम्मे लगाई थी आपने उनको भी इसी तरीके से, यानी जिस ड्यूटी को एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया तो बिना चूनो चरा, मैंने पता नहीं सही बोला कि गलत बोला, चूनो चरा आपने उनको पूरा किया. हार्डशिप्स भी हुई होंगी बट यू फुलफिल्ड योर वर्ड्स.
आरिफा मेरे वालिद अल्लाह बख्शे
आमीन,
जिस दिन मैं सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कराची से लाहौर जा रहा था उन्होंने मुझे 2 नसीहतें की थी. कहा था कि बेटा अपनी रोजी को कभी हराम करके मत खाना. और दूसरे ये कि तुम बड़ी सर्विस में जा रहे हो, बड़े अफसर बनोगे, तुम्हारे नीचे बहुत से लोग काम करेंगे, तो अपने मातहतों का कभी दिल न दुखाना. इसलिए कि वो
मातहत आपका दिल दुखा दें,
वो पलट के तुम्हें जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन बद्दुआ देंगे।
क्या बात।
और बद्दुआ बहुत दूर तक जाती है। तो जिंदगी भर ये कोशिश की कि मेरा कोई जूनियर, मेरा कोई मातहत, मैं मेरी ज्यादती का शिकार ना हो। और उसका नतीजा ये था कि मैं जब सफीर था तो मेरे दोस्त जो इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स में होते थे, वो कहते थे कि ये तुमने क्या जादू किया हुआ है जूनियर अफसरों पर, कि जिससे हम पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो तो वो कहता है जहाँ एम्बेसडर गौरी है वहाँ भेज दीजिए मुझे। इसलिए कि मैं अपने जूनियर से कहा करता था कि देखो, तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत इतनी नहीं है। अगर मैं तुम में देखूंगा कि तुम में आगे बढ़ने और कुछ सीखने का जज्बा है तो मैं सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं देखूंगा कि तुम में जौहर नहीं है, स्पार्क नहीं है, तो फिर तुम मेरे लिए सिर्फ एक कुर्सी भरने वाला बदन हो गए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे हाल पे, लेकिन मैं तुम्हारी रिपोर्ट खराब नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी भर अपने किसी जूनियर की रिपोर्ट खराब नहीं।
ACR जो होती है,
ACR जो होती है।
सर, ये मुहर्रम का जब दिन है तो हमारे प्रोग्राम में सैयद आसिफ रजा साहब प्रोग्राम करते हैं, और हर मुहर्रम में वो इराक चले जाया करते हैं। वेरी लकी कि इराक में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको वो विज़िट करते हैं और अपनी वहाँ इबादत करते हैं। तो कभी आपको भी इराक में जाने का इत्तेफाक हुआ?
मैं तो सफीर रहा हूँ वहाँ।
अच्छा, किस ईयर?
मैं तो वहाँ 3 साल सफीर रहा।
अच्छा,
1996 से 1999 तक।
1996 से।
और ये वो दौर था जो इराक की तारीख का बदतरीन दौर था।
1991 में वॉर लगती है,
उसके बाद अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से इराक पर पाबंदियां आयद हो गई थी। और पाबंदियां ऐसी सख्त थी कि सदर क्लिंटन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े फख्र से ये कहा था कि इराक पर जैसी पाबंदियां हमने लगवाई हैं वो इंसानी तारीख में कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लगी। यहां तक था कि बच्चों के लिए ये जो सुरमे वाली पेंसिलें होती हैं ना
जी,
वो भी इराक को मंगवाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मगरिब के माहरीन का ख्याल था कि पेंसिलों में जो सुरमा होता है, जो ग्रेफाइट होता है, वो भी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
माय गॉड। हालांकि इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मगर इराक की तारीख को मैं बाद में जिक्र करूंगी कि इराक की तारीख के बड़ी दफा इराक को उधेड़ा गया और इराक फिर उठ के खड़ा हो गया, एक इराक और एक ईरान। सो 1996 से 1999 तक आप इराक में रहे। तो एक सवाल आज प्रोग्राम के शुरू में भी आपका तस्करा आया था कि जैसे आपने कहा कि इराक पाबंदियों में से गुजर रहा था, टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत थी और आईसिस और ये वो बहुत कुछ भेजा गया था।
आईसिस उस वक्त तक वजूद में नहीं आई।
उन्हें एक कोई
आईसिस पैदा हुई है अमेरिका ने जब 2003 में इराक पे दोबारा हमला किया, उसके बाद आईसिस जन्म लिया।
अच्छा,
आईसिस उस वक्त तक वजूद में नहीं थी।
अच्छा, चलिए ये तो ठीक है। मगर इराक में जैसे अगर आपकी डेथ होती है, आप इंश्योरेंस देते हैं, देयर आर फ्यू कंट्रीज जहां आपकी डेथ इंश्योरेंस भी कवर नहीं आपको करती। तो जब इन ममालिक में जैसे इराक हो गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे कुवैत एक जमाने में जंग गरम थी, जैसे इन दिनों में शाम का जिक्र हम करते हैं, देयर वाज अ टाइम लीबिया की भी ये सूरत हाल थी, तो जब हमारे सफारतकार इन ममालिक में तयन किए जाते हैं क्योंकि हाई रिस्क जॉब है, तो क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं?
कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट्स दिए जाते थे, लेकिन मुझे तो हमारी उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने इराक सजा के तौर पे भेजा था।
अच्छा, आपको सजा के तौर पे इराक भेजा गया था।
उसकी बड़ी लंबी कहानी है, दिलचस्प दास्तान है, सुना देता हूँ मुख्तसरन।
जी सर।
कि मैं इराक से पहले कुवैत में सफीर था। 1991 की जंग के बाद
कुवैत और सऊदी अरेबिया अमेरिका की लड़ाई थी,
मुझे उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पर इराक कुवैत भेजा था ये कह के कि मैं ऐसे सफीर को वहाँ भेजना चाहता हूँ जो जिसका कुवैत का पहले से तजुर्बा हो, और मैं कुवैत में पहले रह चुका था काउंसलर 3 बरस। मैं अलजजायर में सफीर था, वहां से मुझे हुक्म दिया गया कि अब आप इराक कुवैत चले जाइए। मैंने एहतजाज भी किया लेकिन मुझे बताया गया कि वजीर आजम की खास फरमाइश है, ख्वाहिश है कि किसी तजर्बेकार डिप्लोमेट को कुवैत भेजा जाए ताकि वो पाकिस्तानियों को दोबारा वहां आबाद कर सके।
अच्छा,
तो मैं 5 साल कुवैत में रहा 1996 तक।
ये 1991 में जब ये वॉर होती है तो कुवैत में से बहुत से लोग अपने घरों को सेटल छोड़ के गाड़ियों पे निकल गए थे, तो आपने उनको रीसेटल किया था?
मैंने उनको रीसेटल किया और अल्लाह का शुक्र है कि 1991 में इराक के हमले के वक्त कुवैत में पाकिस्तानियों की आबादी 80,000 के लगभग थी। मैं 1996 में जब कुवैत से रुखसत हुआ हूं तो उस वक्त तक वहां 1,20,000 पाकिस्तानी जम चुके थे।
24,000 और आ गए थे,
40,000 मैंने और आबाद किए थे। मैं उनके लिए लड़ता था जाके बाकायदा कुवैत के अम्माल से, हुक्काम से, कि तुम हमारे लोगों को क्यों नहीं आबाद कर रहे।
अभी सर आपने फरमाया कि जब 1996 से 1999 के दरमियान में आपको इराक में अपॉइंट किया गया तो इट वाज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट बाय मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, व्हाट इट इज?
उसकी दास्तान यह है कि मैंने 1992 और 93 में इमरान खान के कैंसर अस्पताल के लिए अतियात जमा किए थे। मैं पहला सफीर था जिसने इमरान की मदद करने के लिए ये मुहिम शुरू की। वाकया ये है कि 1992 में, मार्च 1992 में या अप्रैल में, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता था। उसके कोई 10-12 रोज बाद का किस्सा है कि उस जमाने में कुवैत में वीकेंड हुआ करता था जुमेरात और जुमे को। तो जुमेरात का दिन था, मैं घर पे था, मेरे पास पीआईए के मैनेजर का फोन आया, कहा कि सर वो इमरान खान कुवैत एयरपोर्ट पे ऑफलोड हो गए। मैंने कहा क्यों ऑफलोड क्यों हो गए? कहा कि वो सऊदी अरब जा रहे थे, रियाद जा रहे थे शौकत तरीन से मिलने के लिए। शौकत तरीन उस वक्त रियाद में सिटी बैंक के जनरल मैनेजर थे।
अच्छा,
तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, इमरान को वहीं रोको। मैं गया एयरपोर्ट पे, इमरान से मुलाकात की, फिर मैंने इंतजाम करा दिया इमरान के लिए अगली फ्लाइट का। मैंने पूछा कि क्यों क्यों रियाद जा रहे हो? तो इमरान ने कहा कि मैंने ये अहद किया है कि मैं अपनी वालदा की याद में, जिनका कैंसर से इंतकाल हुआ था, पाकिस्तान में एक कैंसर अस्पताल बनाना चाहता हूँ। तो शौकत तरीन ने मुझसे वादा किया है कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगे, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। इमरान चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे मुल्क में पाकिस्तान का सफीर हूँ जहाँ इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तानियों की, और मैं कुवैतियों को भी जानता था, मालदार मुखय्यर कुवैतियों को जानता था जिनसे मेरी दोस्ती थी, तो मैं क्यों ना इमरान की मदद करने के लिए फंड रेजिंग शुरू करूँ,
इनफैक्ट पाकिस्तान की मदद करने के लिए, इनफैक्ट उन मुतासर खानदानों की जिनमें कैंसर है।
तो मैंने इमरान के लिए 2 डिनर किए, इमरान को मधु किया और आर्टिस्टों को बुलाया और नुसरत फतेह अली खां को बुलाया। मैंने 2 डिनर किए जिनमें कोई $4,00,000 जमा करके इमरान के हवाले किए। 1993 में पाकिस्तान में हुकूमत बदल गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बरसर इक्तदार आ गई। 1995 में जब इमरान ने अपनी सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो फिर बेनज़ीर को परेशानी हुई कि ब्यूरोक्रेसी में इमरान के दोस्त कौन कौन से हैं। तो दोस्तों की फेहरिस्त में मेरा नाम भी था
कि आपने फंड्स इकट्ठे किए थे 4,00,000।
तो मेरे पास बेनजीर भुट्टो का खत आया, जिसे मैं कहता हूँ लव लेटर, उसमें उन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगा था, और सरकारी इस्तिलाह में एक्सप्लेनेशन मांगने का मतलब बहुत संजीदा होता है,
लाल झंडी।
मुझसे उन्होंने दो बातों के लिए मेरे जवाब मांगा था। पहला ये कि कुवैत के पाकिस्तानियों को तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत है कि तुम एक मखसूस लिसानी ग्रोह की सरपरस्ती करते हो। मैं महाजर था, मैं उर्दू बोलने वाला था, तो इशारा इस तरफ था कि मैं महाजरों की सरपरस्ती करता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि तुमने इमरान के कैंसर अस्पताल के लिए अतियात क्यों जमा किए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने उनको जो खत लिखा था वो दफ्तर खारजा की आर्काइव्स में आज भी यादगार है, 22 सफ़े का खत था वो। और मैं जब बरसों बाद अपने पेंशन के मामला तय करने के लिए इस्लामाबाद गया तो बहुत से जूनियर अफसर फॉरेन सर्विस के मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने पूछा कि यारो क्यों मुझसे मिलने का इश्तियाक था। उन्होंने कहा सर, हम ये देखना चाहते थे कि किस सफीर में इतनी अखलाकी जुरत थी कि वो वक्त की वजीर आजम को ऐसा दबंग, आज की इस्तिलाह में करारा जवाब दे। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, अगर मैं वो जवाब देना चाहूं जो सरकारी अफसरान आम तौर पे दिया करते हैं, तो मैं ये कहूंगा, एक फकरे में ये कहूंगा कि आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मुझसे उस दौर के मुतालिक सवाल करें जब आप वजीर आजम नहीं थी। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कोई एतराज नहीं किया था। मैंने मुहिम की और मैंने बतौर सफीर के जितने भी काम किए हैं, मुझे अगर किसी काम पर फख्र है तो अपने इस कारनामे पर। मैं आपको तफसीली जवाब देता हूं, और तफसीली जवाब यह है कि मैं मुसलमान हूं और मैं जिस किताब पे ईमान रखता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी रखती हैं, वो मुझसे ये कहती है कि जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई कोई कार्य खैर करने के लिए खड़ा हो और तुम उसकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो। तो मैंने ये सोचा कि ये हमारा कौमी हीरो है, इसने हमारे मुल्क के लिए इतनी इज्जत कमाई है, इतना नाम कमाया है, अब ये अपनी वालदा की याद में पाकिस्तान में पहला कैंसर अस्पताल बनाना चाहता है, तो मैं अगर इस हैसियत में हूँ कि बतौर सफीर मैं इसकी मदद करूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने इस जज्बे के तहत उसकी मदद की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आइंदा भी इमरान या और कोई कौमी हीरो इस तरह की मुहिम शुरू करेगा तो मैं पहला सफीर होऊंगा जो उसकी मदद के लिए खड़ा होगा। उसके 3 हफ्ते के बाद मेरे पास खत आ गया कि तुम अब इराक चले जाओ।
आपने अपना टेन्योर 3 साल का उस जगह पे पूरा कर लिया हुआ था?
मैं तो 4 साल पूरे कर चुका था उस वक्त, लेकिन खलबली मच गई कुवैत की हुकूमत में भी और इराकी हुकूमत में भी। इराकी हुकूमत ने मेरा एग्रेमा देने में 6-7 महीने लगाए। उनको परेशानी ये थी कि कुवैत
एग्रेमा मीन एग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट,
क्योंकि ये सिफारती कायदा है कि किसी सफीर को जब नामजद किया जाए
उस मुल्क की राय ले ली जाती
है, मेजबान मुल्क से पूछा जाता है कि तुम इसको कबूल करते हो या नहीं।
ठीक सर, ठीक सर।
तो उन्होंने वक्त लिया। उनको परेशानी ये थी कि कुवैत जिससे इतनी दुश्मनी थी वहां से पाकिस्तानी सफीर को क्यों भेजा जा रहा। इधर कुवैती परेशान थे कि ऐसा सफीर जो जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसने
जो हमें इनसाइड आउट जानता है,
जो हमें अच्छी तरह से जानता है, जिसने अपनी सिफारती करियर के 8 बरस हमारे मुल्क में गुजारे हैं, उसको ये अचानक इराक क्यों भेजा जा रहा है। तो उस वक्त कुवैत के वजीर खारजा थे शेख सबाल अहमद, जो बाद में कुवैत के अमीर हुए, अभी उनका पिछले बरस इंतकाल हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि, और मैं जब उनके दफ्तर में पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका फॉरेन सेक्रेटरी जो मेरा दोस्त था, बहुत अजीज दोस्त था, وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. شیخ صبال احمد نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ سفیر میں نے ابو عمار کو گواہ کے طور پہ بلا کے بٹھایا ہے تاکہ یہ گواہ رہے اس پر جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں. اب میں بڑا چونکا تھا کہ کیا بات ہے کہ یہ ایسی تمہید باندھ رہے ہیں. تو میں نے کہا شیخ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نہیں خیریت نہیں, تمہاری وزیر اعظم کیا پاگل ہو گئی ہے. بالکل یہی الفاظ تھے, تمہاری وزیر اعظم پاگل ہو گئی ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سفارتی آداب میں یہ غیر تحریر شدہ طریقہ ہے کہ کسی دشمن ملک سے کسی دوسرے دشمن ملک کو سفیر نہیں بھیجا جاتا. کیا بات ہے, کیوں وہ ایسا کر رہی ہے؟ وہ تو پڑھی لکھی ہے, باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھی ہے. میں نے کہا شیخ وہ سیاست داں ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے پھر تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا میں کیا کروں گا شیخ, میں تو کیریئر ڈپلومیٹ ہوں, میں حکم کی تعمیل کروں گا. نہیں تمہیں حکم کی تعمیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا شیخ اگر میں تعمیل نہیں کروں گا تو مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی. کہنے لگے چھوڑ دو, میں تمہیں اپنی وزارت میں مشیر لگاتا ہوں, تمہاری حکومت تمہیں جتنا دے رہی ہے اس سے دگنا میں دوں گا, تمہارے سارے گھر کوٹھی نوکر ہر طرح کی سہولت ہوگی تمہیں, تم آرام سے یہاں رہو. تو میں نے کہا شیخ اٹس ویری ٹیمپٹنگ, لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں کیریئر